بسم الله الرحمن الرحيم.
الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کے ذمے جو کام تھے ان میں سے ایک کام ہے یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوت کرنا، انہیں لوگوں تک قرآن کے الفاظ پہنچا دینا، قرآن کی ورڈز. ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن، ان علینا جمعہ و قرآن یتلو علیہم آیات، قرآن کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو حاصل کرنا اور حاصل کر کے امت تک پہنچانا، ایک مقصد آپ کا یہ ہے دنیا میں آنے کا. دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ جو الفاظ ہیں الفاظ پہنچائے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب جو ہے، کتاب جو پہنچائی اس کتاب کو سکھانا، الفاظ پہنچانے کے بعد اس کتاب کی تفسیر بتلانا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں وہ چیز جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان علینا جمعہ و قرآن، اور آگے ہے ثم ان علینا بیانہ، دو ذمہ داری. تو نبی دنیا میں آتا ہے نمبر ایک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور نمبر دو اللہ کا پیغام سمجھانے کے لیے. ایک تو ہے نا کہ ایک لوئر جو ہے وہ پڑھ کر آپ کو سنائے کہ اس لیٹر میں ہوم آفس نے یہ لکھا ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ پڑھ کر سناتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھائی یتلو علیہم آیاتہ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور الحکمہ سے مراد جو ہے، الحکمہ سے مراد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت راجح کنٹرول کرنا. سنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یہ جو سنت ہے وہ تفسیر ہے کس کی؟ قرآن کی. یہ قرآن کی تفسیر ہے. تو اتنا ہی کہنا چاہیے تھا کہ قرآن کو سمجھائیں تفسیر حدیث کے ذریعے، یعنی کہ قرآن بھی سمجھائیں آپ کو اور حدیث بھی سمجھائیں. اس لیے کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے، ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے اسے سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتا تو اسے بھی سمجھانا پڑتا ہے. مثال دوں گا آپ کو، ایک بیٹا ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ لوئر کے پاس گیا، اور وہ لوئر نے پڑھ کر کے سنا ہے کہ یہ خط میں لکھا ہوا ہے، تو باپ کہے کہ میں نہیں سمجھا، تو لوئر اپنی بات میں سمجھاتا ہے یہ تفصیل ہوئی اس خط کی، پھر بھی باپ کہتا ہے کہ نہیں سمجھا، تو بیٹا کہتا ہے کہ یہ لوئر یہ کہنا چاہتے ہیں، تو اس کو بھی کبھی کبھی سمجھانا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی موضوع پر مختلف حدیثیں ہیں، جب ان ساری حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو وہ مظلوم واضح ہوتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا ایک کام کیا ہے؟ الفاظ پہنچانا. نبی کا دوسرا کام کیا ہے؟ میننگ پہنچانا. اب الفاظ بھی آ گئے، میننگ بھی آ گیا، تفسیر بھی آ گئی، تو کلیئر ہو گیا کہ ہمیں عمل کے کیا کرنا ہے یہ معلوم ہو گیا. یو نو واٹ ٹو ڈو، लेकिन बहुत मुश्किल है, नहीं होता। इसका मतलब यह है कि नफ्स नफ्स से अम्मारा है, मुतमईन नहीं है। तो नबी का तीसरा काम यह होता है कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करें और उसका तजकिया करें, ताकि नफ्स मुतमईन ना हो जाए और उस पर अमल कर देंगे। नहीं, बात समझ में नहीं, बोलो। तो नबी के कितने काम है? एक है तिलावत आयत, दूसरा है किताबो सुन्नत की तालीम पूरी तफसीर समझाना, और नंबर तीन ये है पूरा दिन। और नबी जो है लोगों को इस पूरे दिन की तरफ बुलाता है और पूरा दिन सिखाता है, यही है दावत तबलीग। ये दावत तबलीग एट इट्स हाईएस्ट लेवल, दावत तबलीग एट इट्स हाईएस्ट लेवल, कि एक एक लफ्ज को पहुंचाता है, एक एक लफ्ज की तशरीह भी करता है और एक एक चीज पर अमल भी करवाता है। आगे आकर के ऐसी शख्सियत नहीं मिली जो इतनी ज्यादा जामे और कॉम्प्रिहेंसिव होके हुई इज एबल टू टीच द उम्मा एवरीथिंग। तो कुछ लोगों ने यह काम ले लिया कि हम अल्फाज सिखाएंगे, और कुछ लोगों ने यह काम ले लिया कि हम उसकी तशरीह सिखाएंगे, और कुछ लोगों ने ये काम ले लिया कि हम तजकिया करके उस पर अमल करवा रहे हैं। तो कितने हिस्सों में तकसीम हो गया काम? तीन हिस्सों में। इन तीनों को एक साथ कर दो तो वो नबी का काम है, और इनको अलग अलग कर दो तो नबी के वारिसों की तीन गुमान होगी। आगे जाकर के और कमजोरी आई तो कोई अल्फाज सिखा रहा है और दूसरा अल्फाज को दुरुस्त करवा रहे, देखो इसमें दो गुरु हो गए। इधर जो है कोई कुरान की तफसीर कर रहा है, कोई हदीस की तफसीर कर रहा है, इधर दो गुरु हो गए। और जैसे जैसे जमाना बढ़ता गया तो ग्रुप दर ग्रुप, ग्रुप दर ग्रुप, ग्रुप दर ग्रुप। अब जो है कोई तख्ती पढ़ा रहा है, कोई कायदा पढ़ा रहा है, कोई कुरान पढ़ा रहा है, कोई तजवीद पढ़ा रहा है, कोई हफ्स पढ़ा रहा है, कोई सलाह पढ़ा रहा है, कोई सलाह अशरा पढ़ा रहा है, और कोई जो है वो तर्जमे कुरान पढ़ा रहा है, कोई तर्जमे कुरान के लिए नहु पढ़ा रहा है, कोई सर्व पढ़ा रहा है, कोई बलागत पढ़ा रहा है, कोई फिक्र पढ़ा रहा है, वही वल्लमुहुमुल किताब वल हिक्मा के लिए। देखो कितने अलग अलग शोबे हो गए, और फिर जो है उसमें खानकाह में भी सब अलग अलग तकसीम तरीके। तो वो हाईएस्ट लेवल था दावत तबलीग का, कि सारे काम एक ही आदमी करता था, और डिस्ट्रीब्यूट होते 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 अब सबके पास छोटा 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 रह गया, इसलिए कि सब में वो ताकत नहीं है कि उन जैसा काम करे। तो ये दावत और तबलीग जो है वही टूट करके तकसीम हो गया। तो जितने लोग दीन की खिदमत करते हैं वो सब के सब दावत और तबलीग का काम करते हैं, ये असल नबी काम है। वही वल्लमुहुमुल किताब वल हिक्मत वल इज्जत, यतलू अलैहिम आयातिक वही वल्लमुहुमुल किताब वल हिक्मत वल इज्जत। दुआ की तो रब्बाना वबसीहिम रसूलन मिनहुम, रब्बाना वबसीहिम रसूला, और रसूल की सिफत क्या है? यदुन्ना से लद्दीन युबर लिबुद्दीन इलन्नास यतलू अलैहिम युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ये है रसूल की काम। लकद मन्नल्लाह, अल्लाह ने एहसान किया किस पर? मोमिनीन पर। क्यों एहसान किया? इसलिए कि जब एहसान बयान करते हैं, गौर से सुनो, एहसान बयान करते हैं तो मैं अगर ऐसा कहूं कि मेरा मौलाना अहमद साहिब पर एहसान है कि मैंने उनको एक ऐसी गाड़ी दी जिसमें जापान का इंजन है। और दूसरी बात मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरा मौलाना अहमद साहब पर एहसान है कि मैंने उनको ऐसी गाड़ी दी जिसमें बहुत कंफर्टेबल सीट है। आदमी जब एहसान में बोलता है तो कम कीमती चीज को बयान करता है या सस्ती चीज को? सीट को बयान करेगा या इंजन को? समझो, सुनना कोई क्या आपने ऐसी गाड़ी ली थी जिसमें सीट बहुत कंफर्टेबल है तो कौन सा कमाल कर दिया? वो फोम ही तो है, स्पॉन्ज ही तो है, उसमें कौन सा कमाल कर दिया? तो कहते हैं मैंने इनको ऐसी गाड़ी दी उसका इंजन जैसा कीमती चीज को बयान कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उन पर ऐसा रसूल भेजा जो ये करता है, ये करता है और ये करता है। जो सबसे आला काम नबी के होते हैं उसको बयान किया गया और वो भी है तिलावत आयात, तालीम किताब हिकमत और खानका ही काम, तज़किया का काम। तज़किया हो जाएगा, तज़किया तो नफ्स क्या हो जाएगा? मुस्लिम जो महसूस मही ना हो जाएगा तो अब गौर से देखो। अब नबी इस काम के लिए है कि ये तीन काम आपको करने के हैं। अब नबी दुनिया से चला जाए, नबी दुनिया से चला जाए और ये तीन काम करने वाले दुनिया में बाकी न रहे तो फिर कयामत तक आने वाले लोग जन्नत में कैसे जाएंगे? तो नबियों के जाने के बाद इन तीनों कामों को करने वाले लोग दुनिया में बाकी रहेंगे कयामत तक।